गिनती, पाठ एक परिचय। खैर, हम तवे से निकलकर आग में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इजरायली करने वाले थे। जैसे ही हम लैव व्यवस्था की पुस्तक को नीचे रखते हैं, हम गिनती की खोज शुरू करते हैं जो कई महीनों तक चलेगी। तो आइए एक पल के लिए पीछे जाएं और इसराइल की वर्तमान स्थिति को देखें। लैव व्यवस्था के अंत तक वे मिस्र से लगभग एक वर्ष पहले ही चले गए थे। इन लोगों के साथ इतनी जल्दी इतना कुछ हो गया। इसराइल 75 लोगों के गोत्र से बढ़कर लगभग 3 मिलियन लोगों के एक बड़े राष्ट्र में बदल गया, जबकि वे मिस्र में 4 शताब्दियों तक रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हम ये समझ पा रहे हैं कि 400 साल की अवधि कितनी लंबी होती है। 200 साल से ज्यादा नहीं, इसराइल के मिस्र में रहने के समय का सिर्फ आधा समय जॉर्ज वॉशिंगटन नए बने संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। लेकिन हमारे लिए उन दिनों से झुरना लगभग असंभव है। और फिर भी उन अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में लिखे गए सभी कागजात, किताबें, निबंध और दस्तावेजों के बावजूद जो इस महान राष्ट्र की स्थापना का कारण बने, वास्तव में क्या हुआ ये पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। इतिहास पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और उसे संशोधित किया जा रहा है। हमारे पास क्रांतिकारी युद्ध के दौर की कई दंत कथाएं हैं। वॉशिंगटन द्वारा चेरी के पैर को काटना, संत पॉलस रेवर की सवारी, बोस्टन टी पार्टी, कॉनकॉर्ड में पहली गोली चलाई गई, और भी बहुत कुछ हुआ। इनमें से लगभग सभी कहानियां वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, लेकिन ज्यादातर को शायद साफ सुथरा करके, ढाल कर और अतिरंजित करके पात्रों को जीवन से बरा बनाने और एक दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए बनाया गया है जो एक निश्चित राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप है। हमारे जैसे आधुनिक लोगों के लिए अमेरिकी क्रांति की घटनाएं सबसे ज्यादा धुंधली है और धूल भरी इतिहास की किताबों में बंधी हुई है। उन दिनों के सबसे ज्यादा स्वीकृत विवरणों का बया या खंडन करने वाला कोई भी जीवित नहीं है, और मात्र 250 साल पहले की वे घटनाएं हमारे लिए बमुश्किल प्रासंगिक मानी जाती हैं, इसलिए बहुत कम लोग जानना चाहते हैं। एक ऐसे युग में जब पूरे उपनिवेशों में प्रिंटिंग प्रेस की भरमार थी, अखबारों का चलन था, पत्रकारिता एक सुस्थापित पेशा था, पुस्तकालय भरे हुए थे और बढ़ रहे थे, और संचार की गति अभी भी काफी तेज थी, हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसके साथ उस युग के बारे में हमारा वर्तमान ज्ञान सीमित है, और उन लोगों के जीवन में हमारी रुचि लगभग शून्य है, और वास्तविक क्रांतिकारी युद्ध के रिकॉर्ड की पर्याप्त मात्रा के बावजूद अमेरिका के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वास्तव में क्या हुआ इस बारे में विद्वानों के बीच बहुत कम आम सहमति है। इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट है जो 200 साल से भी कम समय पहले हमारे संविधान को लिखने वाले लोगों के इरादे से सहमत नहीं हो सकता है। क्रांतिकारी युद्ध काल के बारे में समकालीन अमेरिकी दृष्टिकोण के अनुरूप अपने आप को मिस्र में, मिस्र के आगमन से पहले के वर्षों में इसराइलियों के स्थान पर रखें।
मूसा, वे कई शताब्दियों पहले मिस्र में कैसे पहुंचे, यह शायद अधिकांश इब्रानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। जब से याकूब अपने बेटों और उनके परिवारों को कनान की भूमि से मिस्र लाया था, तब से कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं, ताकि उस क्षेत्र में परे
भयंकर अकाल से उनकी देखभाल की जा सके, और उनका प्रायोजक और देखभाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्र का बैंड वजीर था, याकूब का अपना बेटा यूसुफ। यूसुफ जाहिर है याकूब का पसंदीदा बेटा, जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसे कई साल पहले जंगली जानवरों ने मार डाला था। वह न केवल इसराइल का बल्कि मिस्र का भी उद्धार करता था, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर के पास इसराइल के लिए एक उद्देश्य था, उसी तरह मिस्र के लिए भी उसका एक उद्देश्य था। मिस्र को वह गर्भ बनना था जिसमें इसराइल तब तक गर्भ धारण करता जब तक कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त समय न आ जाए कि वे पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में जन्म लें जो उसकी सेवा के लिए अलग रखा गया हो।
जब यहोवा मूसा के आगमन के लिए इसराइल को तैयार कर रहा था, तब याकूब और यूसुफ केवल दूर की यादें रह गए थे। इसराइलियों के वर्तमान समूह को उनके बारे में कितना पता था, यह वास्तव में सच था या कितना अतिशयोक्ति और दंत कथाएं थी, इसका आकलन करना मुश्किल होगा, सिवाय इसके कि हमारे जैसे इसराइली भी जीवन जीने की कोशिश कर रहे लोग थे और उनके सामने आने वाली दिन प्रतिदिन की चुनौतियां ही चिंता करने के लिए पर्याप्त थीं। बिना खुद को किसी बुलाती हुई ब्रह्मांडीय भविष्यवाणी पहेली का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा समझे, वास्तव में इजरायली अब अपनी सोच और विश्वास में इब्रानी से ज्यादा मिश्री थे। मुझे संदेह है कि अब्राहम उन्हें पहचान पाता, और फिर भी वे पूरी तरह से नहीं भूले कि वे कौन थे और वे कहां से आए थे। उनके पास ऐसे नेता और बुजुर्ग थे जिन्हें परमेश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए खड़ा किया था, ऐसे नेता जो उन्हें भूलने नहीं देते थे, भले ही इब्रानी आबादी का एक अच्छा हिस्सा इन नेताओं को बूढ़ा और खोई हुई उम्मीद और एक प्राचीन मिथक का अनुयायी समझता था। हमारे जैसे वे भी सोचते थे कि सदियों पहले की घटनाओं का वास्तव में उनसे क्या लेना देना था।
तो चौथी शताब्दियों के बाद औसत हिंदू ने अब्राहम, इसहाक और फिर याकूब से किए गए वादे के बारे में वास्तव में कितना सोचा कि उनका परमेश्वर उन्हें अपनी भूमि देगा, एक ऐसी भूमि जो दूध और शहद से बहती है, यहां तक कि यह एक बहुत ही विशिष्ट भूमि होगी जिसे उन्हें प्राप्त करना था, वह भूमि जहां उन्हीं तीन कुलपिताओं ने अपने जीवन के अधिकांश समय में भ्रमण किया, कनान की भूमि।
क्या इसराइल अभी भी उम्मीद से इंतजार कर रहा था, या फिर उन्होंने काफी हद तक हार मान ली थी और अपनी नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लिया था? क्या उन्होंने अपनी मातृभूमि की चार सदियों पुरानी उम्मीद को अपने दिमाग में इतना पीछे धकेल दिया था कि वह अब बस एक दूर की याद बनकर रह गई थी? आज हम अपने देश के जन्म क्रांतिकारी युद्ध कॉनकॉर्ड में मिनटमैन बेंजामिन फ्रैंकलिन और अपने रिश्तेदारों के बारे में कितना सोचते हैं, जिन्होंने आज हम जिस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं उसके लिए अपनी जान दे दी।
तो इजरायली बस जीवन जी रहे थे, हालांकि यह एक दयनीय जीवन था, क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी मिस्र सरकार के दास श्रम बल बन गए थे जिसका उद्देश्य साम्राज्य निर्माण करना था। जब अचानक मूसा नाम का एक आदमी प्रकट होता है और कहता है कि परमेश्वर ने उसे भेजा है, इब्रानियों ने सामूहिक रूप से आह भरी, हां ठीक है, और अपने काम पर चले गए। खैर, इतने सालों के अस्तित्व के बाद, सैकड़ों सालों तक किनारे पर बैठे रहने के बाद, अचानक भविष्यवाणी के डोमिनोज एक दमदार दर से गिरने लगे। मूसा ने अपने मिशन के बारे में इसराइल के बुजुर्गों को बताया, फिर वह तुरंत फिरौन के पास गया और परमेश्वर से अपने लोगों को जाने देने का संदेश दिया। फिरौन ने मना कर दिया और परमेश्वर ने विनाशकारी विपत्तियों के माध्यम से मिस्र के राजकुमार का मन बदलने की कोशिश की। आखिरकार फिरौन के परमेश्वर की चेतावनियों और अनुशासन के प्रति कठोर बने रहने के बाद एल शद्दाई का न्याय मिस्र की भूमि और सभी पहलौठों पर बरसा दिया गया। मिस्र रवासी और उनके जानवर मर जाते हैं। इब्रानियों को पहले से ही निर्देश दिया गया था कि वे अपनी मिट्टी की ईंटों की झोपड़ियों के दरवाजों पर एक साल के मेढ़े का खून लगाएं। यह परमेश्वर के लिए एक संकेत था कि वे उसके अधीन हैं। कई मिस्रियों और अन्य दूर दराज के देशों के प्रवासियों ने 9 अन्य सांसारिक विपत्तियों और संक्रमणों की उस श्रृंखला में इब्रानियों के परमेश्वर की शक्ति देखी थी, और इसलिए उन्होंने उसका अनुसरण किया जिन्होंने आज्ञा का पालन किया। इब्रानी, मिस्री, कनानी, हित्ती, बेडोइन, अफ्रीकी, सभी को सृष्टिकर्ता के हाथों मृत्यु से बचा लिया गया।
उस भयानक न्याय के 24 घंटे के भीतर ही इसराइलियों ने अपना सामान समेट लिया और मिस्र से बाहर निकल पड़े। उसके कुछ ही सप्ताह के भीतर वे माउंट सिनाई पहुंच जाते हैं और उनके नेता मूसा को यहोवा के मुख से सीधे आदेशों और अध्यादेशों की एक लंबी श्रृंखला मिलनी शुरू हो जाती है। मूसा को इसराइल का संविधान मिल रहा है और यह किसी भी मनुष्य द्वारा कभी नहीं देखा गया है, क्योंकि यह किसी मनुष्य का संविधान नहीं है, हालांकि उन्हें पुजारियों का राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन मूसा के भाई हारून के परिवार के माध्यम से एक अलग पुरोहिती स्थापित की जाती है। ईश्वर के सिद्धांतों को अनुष्ठानों और समारोहों और पवित्र दिनों और सर्वशक्तिमान ईश्वर के सभी महत्वपूर्ण सांसारिक निवास स्थान जंगल के निवास स्थान के निर्माण के माध्यम से मनुष्यों द्वारा दृश्य और भौतिक और समझने योग्य बनाया गया था। यह भव्य पोर्टेबल तंबू परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन कक्ष का एक भौतिक सांसारिक मॉडल था। मूसा नियमित रूप से उस तंबू के पवित्रतम स्थान के अंदर परमेश्वर से आमने सामने मिलता था और सलाह और निर्देश प्राप्त करता था। लेकिन अब लेव्य व्यवस्था की पुस्तक के अंत तक परमेश्वर के लोगों का उद्धार पूरा हो चुका था। इसराइल के नए राष्ट्र के लिए नियम अध्यादेश और सिद्धांत स्थापित हो चुके थे और परमेश्वर के लिए अपने प्रिय लोगों के बीच रहने का एक साधन पूरा हो चुका था। और मिस्र में महान मृत्यु की रात, जिसे हम आज फसह कहते हैं, से लेकर लेव्य व्यवस्था की पुस्तक के अंत तक केवल एक वर्ष का समय था। कल्पना कीजिए कि यदि आप उन साधारण इब्रानियों में से एक होते तो आपका सिर कैसे घूम रहा होता। यहोवा ने अपने मध्यस्थ मूसा के माध्यम से जो कुछ भी निर्देश दिया था वह आपके द्वारा जब तक जानी गई हर बात से कितना अलग था। जो कुछ भी आपको बहुत मूल्यवान लगता था, परमेश्वर कहता है कि वह बेकार है। जो कुछ भी आपको बहुत मूल्यवान लगता था, परमेश्वर कहता है कि वह अमूल्य है। क्या आप या मैं एक वर्ष में पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या आप या मैं चंद्रमा के 12 या 13 चक्रों में पूरी तरह से मूर्ति पूजक से पूरी तरह से ईश्वरीय बन सकते हैं? क्या आप या मैं इतने कम समय में अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को भूल सकते हैं जो वास्तविक और निर्विवाद थे? क्या हम उन विचारों और तुरंत प्रतिक्रियाओं को जो हमारे जीवन और हमारे पूर्वजों के जीवन को परिभाषित करती थीं, उन नियमों के एक पूरे नए सेंट के पक्ष में नहीं ले जाएंगे जो इस समय केवल सैद्धांतिक आदर्श थे?
बतौर, यही वह बिंदु है जहां हम इसराइल के विकास में गिनती की पुस्तक में प्रवेश करते हैं। और निश्चित रूप से जब तक इसराइल ने जो कुछ भी किया था, यह सिर्फ शुरुआत थी। जो कुछ भी हुआ था और जो कुछ भी उन्हें उस बिंदु तक निर्देश दिया गया था, वह अपने आप में अंत नहीं था। ये केवल उन्हें आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए था। मैं ये टिप्पणी करना चाहूंगा कि जबकि ईश्वरीय आदर्शवाद तोरह और उन शिक्षाओं के मूल में था जो प्रभु ने मूसा को दी और मूसा ने अपने प्रभारियों को दी, ये आदेश व्यावहारिक भी थे। लेव्य व्यवस्था के ये पुरोहिती कानून कुछ मायनों में एक तरह के स्वप्न लोक की कल्पना करते थे, लेकिन दूसरी ओर वे एक नई और पवित्र जीवन शैली की रूपरेखा थे जिसे इसराइलियों को ईश्वर के लोगों के रूप में जीना और उसका आनंद लेना था। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वे कानून एक यथार्थवाद से संतृप्त थे जो प्राचीन इसराइल और प्राचीन की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते थे। सामान्य तौर पर मध्य पूर्व बाहर से देखने पर इसराइल जिस तरह से काम करता था वह उस युग के लोगों के लिए काफी सामान्य था। इससे भी अधिक ये कानून काम करते थे। आस्तिक के लिए यह कहना आम और सही है कि कानून एक छाया और एक प्रकार था और यह मसीहा के कार्य और मिशन की ओर इशारा करता था। फिर भी यह मान लेना कि कानून का वास्तव में इसराइल के लिए कोई वास्तविक और ठोस और तत्काल उद्देश्य नहीं था, या कि वे हर दिन व्यावहारिक तरीकों से संचालित और प्रदर्शन करने के लिए नहीं थे, एक गलती है। ईश्वर द्वारा निर्धारित कानून और अनुष्ठान जो प्रायश्चित करने का साधन निर्धारित करते हैं, पाप के लिए वास्तविक प्रायश्चित प्रदान करते हैं। कानून और अनुष्ठान जो अनुष्ठान अशुद्धता के बाद फिर से शुद्ध होने का साधन निर्धारित करते हैं, वास्तविक सफाई प्रदान करते हैं। ये कोई दिखावा या निम्न प्रायश्चित और सफाई नहीं थी जैसा कि अक्सर गलत तरीके से सिखाया जाता है। इस प्रकार गिनती की पुस्तक में हम इन अनुष्ठानों को पूर्ण संचालन में देखेंगे, क्योंकि लोग पाप करते हैं और अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध हो जाते हैं और फिर पुजारी उचित तरीके से उचित अनुष्ठान करते हैं उपासक की पूरी भागीदारी के साथ, और स्थिति ठीक हो जाती है।
मुझे संदेह है कि बहुत से ईसाइयों ने कभी भी गिनती की पुस्तक में प्रवेश किया होगा। हमारे कानों के लिए यह कितनी नीरस पुस्तक है। लेकिन जैसा कि आप जानने वाले हैं, गिनती की पुस्तक बाइबल की सभी पुस्तकों में से सबसे जीवंत और जानकारीपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि हमारे समय में गिनती शब्द का संबंध लेखांकन और रिकॉर्ड रखने, गणित, आयकर रिटर्न, चेक बुक का संतुलन, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग, बजट और ऋण से निपटने से है। गिनती व्यक्तित्वहीन और ठंडी होती है और कुछ मायनों में तो हमारी संस्कृति के लिए खतरा भी लगती है। दूसरी तरह से गिनती एक तरह के आत्म लगाए गए बंधन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे हम पसंद करें या न करें, हमें उससे निपटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन बहुत पहले गिनती जादुई थी, वे रहस्यमय थी और अच्छी और बुरी चीजों का पूर्वाभास कराती थी। वे प्रतीकात्मक थी और देवताओं के मन और इच्छा को खोलने की कुंजी मानी जाती थी। गिनती वांछित, रोमांचक और गहन अध्ययन और चर्चा की जाती थी। गिनती विस्मयकारी, स्वागत योग्य और कभी कभी डरावनी होती थी। गिनती इब्रानी लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी, यीशु के युग से लेकर आज तक। प्रेरित पौलुस ने अपनी महानतम शिक्षाओं में से एक में गिनती की पुस्तक का भरपूर उपयोग किया, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 10 में पाया जाता है। मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थियों 10 का 1-11 पढ़ें। आप देख सकते हैं कि संत पौलुस ने जिन घटनाओं को सूचीबद्ध किया है वे सभी तोरह में लिखी हुई हैं। खास तौर पर गिनती की किताब में संत पौलुस ने वही देखा जो हम देखेंगे कि गिनती की किताब इतिहास का रिकॉर्ड होने के साथ साथ भविष्यवाणी भी करती है। हम गिनती की किताब में मसीहा को देखेंगे और हम उसे मनुष्य बनने से पहले काम करते हुए देखेंगे।
गिनती वास्तव में इस पुस्तक का इब्रानी नाम नहीं है, यह तोरह की 5 पुस्तकों में से 4th पुस्तक है। गिनती केवल इस पुस्तक को दिए गए यूनानी नाम का अंग्रेजी अनुवाद है, अरिथमोई, जिससे हमें अंक गणित शब्द भी मिलता है। और यूनानियों ने इसे यह नाम इसलिए दिया क्योंकि शुरुआती अध्यायों में प्रभु ने इसराइलियों की जनगणना करने का आदेश दिया था और परिणाम दर्ज किए गए थे। इब्रानी में इस पुस्तक का नाम बिमिदबार है और इसका अर्थ है जंगल में। बिमिदबार की पुस्तक में ही हमें उन 40 वर्षों की कहानी मिलती है जो इसराइल ने निगेव, सिनाई और संभवतः थोड़े समय के लिए अरब प्रायद्वीप के जंगल में भटकते हुए बिताए थे।
गिनती वास्तव में एक गलत नाम है और वास्तविक गिनती और सूचियां बहुत कम हैं। इस पुस्तक का अधिकांश भाग उन प्रारंभिक 40 वर्षों की कहानियां और आख्यानों से बना है जिनके बारे में हमारे प्रभु ने स्पष्ट रूप से सोचा था कि हमें उनके बारे में जानना जरूरी है, जैसा कि संत पौलुस अपने पाठकों को जोर देकर बताते हैं। बिमिदबार में कई तरह की रोचक बारीकियां हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले 10 अध्याय केवल 20 दिनों की अवधि को कवर करते हैं। यह सही है कि पहले 10 अध्याय 3 सप्ताह से भी कम समय की घटनाओं को रिकॉर्ड करते विद्वान शौकीन बाइबल के संपादक और टिप्पणीकार एवरेट फॉक्स बिमिदबार की एक ऐसी संरचना देखते हैं जिसे 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। प्रथम खंड में अध्याय 1-10 शामिल है और उन्होंने इसे सिनाई के जंगल में शिविर नाम दिया है। इसमें इसराइलियों की जनगणना और लेवियों को सौंपे गए कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसमें शिविर के क्रम, नाजीर के संस्कार, जंगल के तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति के मामले और कनान की भूमि की ओर यात्रा की शुरुआत के बारे में बताया गया है। दूसरे खंड में अध्याय 11-25 शामिल हैं और फॉक्स इसे विद्रोही लोग चुनौतियों की कथाएं कहते हैं। इसकी शुरुआत मिस्र से बाहर आए निर्वासितों की पीढ़ी के भाग्य, उनके पहले 3 विद्रोहों, कनान में भेजे गए 12 जासूसों के विवरण, फिर कुछ और विद्रोहों, विभिन्न अन्य लोगों के साथ मुठभेड़ों और फिर मूर्ति पूजक भविष्यवक्ता बालाम की प्रसिद्ध कहानी से होती है।
तीसरे खंड में अध्याय 26-36 शामिल है। हमारे टिप्पणीकार ने इसे मोआब के मैदानों में कनान की विजय के लिए तैयारी शीर्षक दिया है। यह एक और जनगणना से शुरू होता है। कुछ पवित्र दिन बलिदानों के बारे में बात करता है, प्रतिज्ञा करने के बारे में कुछ नियम जोड़ता है, उन लोगों के साथ उनकी कुछ लड़ाइयों के बारे में बताता है जो उन्हें मिले थे, वादा किए गए देश की आगामी विजय पर चर्चा करता है और अभयारण्य शहरों या शरण के शहरों के बारे में कानून बनाता है जो लेवियों के एक विशेष समूह द्वारा उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में संचालित किया जाएगा जिन्होंने बदला लेने के लिए हत्या की थी।
क्योंकि यह एक काफी बड़ी किताब है, इसलिए यह हमें पहले से ही यह जानने में मदद करती है कि 30,000 फीट की दूरी से देखने पर बिमिदबार गिनती 3 के पैटर्न के अनुसार चलती हैं, और इसलिए हम इसके पन्नों में प्रभु की ओर से प्रकाशन और निर्देश के 3 महत्वपूर्ण चक्र पाते हैं। पहला सिनाई में होता है, दूसरा कादेश जिसे कादेश बर्निया भी कहा जाता है में, और तीसरा मोआब में होता है जब इज़राइल कनान में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है।
गिनती वह पहली पुस्तक नहीं होगी जिसे कोई व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने का इच्छुक है संभवतः पढ़ना शुरू करना चाहेगा, क्योंकि गिनती पूरी तरह से उत्पत्ति और निर्गमन द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति बिमिदबार के लिए आधारभूत संदर्भ को नहीं जानता या समझता है तो वह हमेशा गलत समझेगा कि क्या चल रहा है, विशेष रूप से ईश्वर द्वारा निर्धारित कई अनुष्ठानों के संबंध में।
हाँ, बिमिदबार में बेशक बहुत सारे अनुष्ठान कथा में चुने गए हैं। आखिरकार लैव्य व्यवस्था के निर्धारित अनुष्ठानों को गिनती की घटनाओं के शुरू होने से पहले ही पिछले कुछ हफ्तों में ही शुरू किया गया था, और इसलिए उन्हें व्यवहार में लाने का समय अभी शुरू ही हुआ था।
आधुनिक समय के ईसाई, विशेष रूप से आधुनिक समय के इंजील ईसाई, सामान्य नियम के रूप में अनुष्ठानों को विशेष रूप से पसंद नहीं करते हैं। वास्तव में अनुष्ठान के लिए यह अरुचि नई नहीं है। अधिकांश ज्ञानोदय युग के ईसाई विद्वान अनुष्ठान को नापसंद करने में कोई संकोच नहीं करते हैं, और यह तोरह के आदेशों पर उनके पीछे के प्रहारों और विशेष रूप से लेवी पुजारियों की भूमिकाओं के उनके सतही अध्ययन और जांच में दिखाई देता है। चूंकि अधिकांश सेमिनरी इन विद्वानों के मूल्यों और निष्कर्षों के अनुसार पढ़ाते हैं, इसलिए अनुष्ठान करने या प्राचीन इब्रानी अनुष्ठान प्रथाओं में मूल्य देखने के प्रति घृणा सामान्य रूप से चर्च में भी फैल गई है। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, चर्च ने अनिवार्य रूप से सांप्रदायिक जिम्मेदारी की किसी भी भावना को त्याग दिया है और इसके स्थान पर व्यक्तिवाद को हमारे विश्वास की कार्रवाई और अभिव्यक्ति के लिए मंच के रूप में अपनाया है। अनुष्ठान के लिए यह तिरस्कार व्यक्ति उन्मुख संप्रदायवादी धर्मशास्त्रों में एक आरामदायक साथी है, और इसलिए जिस लेंस के माध्यम से अब तोरह को देखा जाता है और सबसे विशेष रूप से पुरोहित अनुष्ठानों के प्रति ईसाई दृष्टिकोण, यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहजता अच्छी है, संगठित अनुष्ठान बुरा है।
मुझे आपको ईमानदारी से बताना होगा कि चर्च की प्रोटेस्टेंट शाखा में पले बड़े होने और 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत के यीशु आंदोलन का हिस्सा होने के कारण मुझे बाइबल के त्योहार सप्त इत्यादि को मनाने के लिए खुद को ढालने में बहुत कठिनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा है, न ही मैं यह तर्क देता हूं कि यह परमेश्वर की आज्ञा है। ये बस वह नहीं है जो मैंने अपने पूरे जीवन में जाना है, और इसलिए बाइबल में बताई गई बातों के बदले में जो आरामदायक और सामान्य है उसे अलग रखना काम है।
भले ही आपको बाइबल के अनुष्ठान में अपनी भागीदारी का कोई महत्व न दिखाई दे, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि तोरह के अनुष्ठानों को समझना तोरह को समझने के साथ साथ मानव जाति के लिए ईश्वर की योजना को समझने की कुंजी है। मानव विज्ञानी लंबे समय से जानते हैं कि अगर किसी समाज आधुनिक प्राचीन को समझने जा रहे हैं तो उन्हें उस समाज के अनुष्ठानों से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अनुष्ठान किसी भी समाज के मूल्यों का सबसे महत्वपूर्ण कथन होते हैं।
सुनिए प्रसिद्ध मानव विज्ञानी एम विल्सन ने आधी सदी पहले किसी संस्कृति को परिभाषित करने में अनुष्ठानों के महत्व के बारे में क्या कहा था। अनुष्ठान मूल्यों को उनके सबसे गहरे स्तर पर प्रकट करते हैं। मनुष्य अनुष्ठान में वही अभिव्यक्त करते हैं जो उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करता है, और चूंकि अभिव्यक्ति का यह रूप पारंपरिक और अनिवार्य है, इसलिए अनुष्ठान समूह के मूल्यों को प्रकट करता है। मैं अनुष्ठानों के अध्ययन में मानव समाजों के आवश्यक गठन को समझने की कुंजी देखता हूं।
मुझे नहीं लगता कि बाइबल में बलिदान से जुड़े अनुष्ठानों से ज्यादा अनदेखा व नापसंद किया जाने वाला और इसलिए ज्यादा बुरी तरह गलत समझा जाने वाला विषय है। फिर भी शायद ही कोई पादरी या बाइबल शिक्षक हो जो नियमित रूप से यह न बताए कि यीशु ने उसी बलिदान प्रणाली को पूरा किया जिसे वे दोनों नापसंद करते हैं और जिसके बारे में कुछ नहीं जानते। जैसा कि गॉर्डन वेनहम बताते हैं, बलिदान प्रणाली बाइबल की पूजा के मूल में है, यह अपरिहार्य है।
इसलिए हालांकि यह हमारे लिए पूरी तरह से आरामदायक नहीं हो सकता है, हमें इसका अध्ययन करने और समझने की आवश्यकता है। तोरह के अनुष्ठान, क्योंकि इन अनुष्ठानों का पूरा उद्देश्य ईश्वर और मनुष्य के बीच संचार के इर्द गिर्द घूमता है। ये अनुष्ठान बाइबल के ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते का सार बताते हैं। प्राचीन लोगों के लिए ये अनुष्ठान आज की फिल्मों में जाने जैसा था दृश्य तत्व समझने के लिए एक आवश्यक और वांछित चीज है और यह मनुष्यों के लिए बहुत शक्तिशाली है।
आज चर्च में कुछ ही अनुष्ठान बचे हैं जिनमें उपासक सक्रिय रूप से शामिल होता है, मुख्य रूप से बपतिस्मा और संस्कार, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। इसके साथ समस्या यह है कि अब हमारे पास जो अनुष्ठान है वह एक तरफा हो गया है, कोई और करता है, हम देखते हैं, और किसी न किसी तरह हमारी उपस्थिति ही पूजा के लिए मायने रखती है। ये बाइबल के अनुष्ठान का सार नहीं था, चाहे पुराना नियम हो या नया नियम। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, पुजारियों या पूरे इसराइल समुदाय की ओर से किए जाने वाले बलिदानों को छोड़कर उपासक एक सक्रिय भागीदार था और वह ही बलि के जानवर को मारता था। उपासक को हर साल 3 मौकों पर मंदिर की तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता होती थी। उपासक को अपने सामान्य काम को अलग रखना होता था, लगभग सभी उत्पादक गतिविधियां को रोकना होता था और सप्त पर आराम करना होता था। उपासक को सुख कोथ के दौरान सुख का बनाने और उसमें रहने की आवश्यकता होती थी। अनुष्ठान में सक्रिय भागीदारी आदर्श थी। हमारे लिए बिली ग्राहम की वेदी के लिए प्रसिद्ध पुकार गाना कितना आसान है, जैसा मैं हूं एक भी दलील नहीं, बस इतना कि तेरा खून मेरे लिए बहाया गया। अगर हमें एक आधा टन का बैल जिसे हमने पाला और या खरीदा है लेना पड़े और उसे वेदी तक खींच कर ले जाना पड़े, उसे वेदी के 4 सींगों में से एक से बांधना पड़े और फिर अनुष्ठान पूर्वक उसकी गर्दन की धमनी को काटना पड़े और कुछ ही सेकंड में उसके प्राण निकलते हुए देखना पड़े, तो ये शब्द हमारे लिए कितने मायने रखते।
मुद्दा यह है कि बाइबल के इन अनुष्ठानों को हमें भूलना नहीं चाहिए। जब हम गिनती की पुस्तक में उन्हें फिर से देखते हैं तो वे अब केवल लैव्य व्यवस्था के आदर्शवाद और सिद्धांत नहीं रह जाते। इसलिए उन पर ध्यान से ध्यान दें, क्योंकि उनके अंतर्निहित सिद्धांत वही हैं जो अपरिवर्तनीय प्रभु परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखें कि हम और भी उभरते ईश्वर प्रतिरूपों के लिए बिमिदबार का अन्वेषण कैसे करते हैं, ऐसे प्रतिरूप जो नए नियम में खुद को शक्तिशाली रूप से प्रदर्शित करेंगे। मेरा मानना है कि सबसे दिलचस्प प्रतिरूपों में से एक नाजराइट का है। जब मैं नाजराइट कहता हूं तो इसे नाजरीन या नासरत यीशुआ के घर के साथ भ्रमित न करें। एक नाजराइट एक गैर लेवी और गैर पुजारी होता है जिसे एक व्रत के माध्यम से ईश्वर की सेवा के लिए अलग रखा गया है और इस प्रकार अन्य इसराइलियों की तुलना में उसका पवित्र दर्जा ऊंचा है। आधुनिक समय के शब्दों में जबकि एक लेवी पुजारी पादरी होता है, एक नाजराइट एक आम आदमी होता है। दूसरे शब्दों में नाजराइट की शपथ लेना एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक तरीका है जो लेवी के पुजारी गोत्र का स्वाभाविक सदस्य नहीं है, उसे पवित्र घोषित किया जाता है और ईश्वर की सेवा के लिए योग्य माना जाता है, आम तौर पर एक पुजारी के बराबर। पुजारी और नाजीर के बीच समानता तब स्पष्ट हो जाती है जब हम नाजीर के लिए निर्धारित अनुष्ठानों का अध्ययन करते हैं। वे पुजारी के अनुष्ठानों के लगभग समान हैं। हम इन अनुष्ठानों को देखेंगे जिनमें इसके उद्देश्य के आध्यात्मिक अर्थ का सार है, गिनती के हमारे अध्ययन में उचित बिंदु पर आ, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझें कि एक पुजारी जन्म से पुजारी होता है।
उसे पुजारी होने का जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि वह उचित गोत्र में पैदा हुआ है। दूसरी ओर एक नाजीर एक साधारण इजरायली है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पुजारी होने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह सही गोत्र में पैदा नहीं हुआ है। फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों के लिए एक प्रावधान किया है जो गैर लेवीय हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेवा करना चाहते हैं ताकि वे ऐसा कर सकें। परमेश्वर में विश्वास और भरोसे से और परमेश्वर की घोषणा से यह व्यक्ति, यह नाजीर जो पुजारी के लिए विदेशी है, उसे एक पुजारी के बराबर विशेष पवित्रता लेने की अनुमति है। फिर से एकमात्र अंतर यह है कि नाजराइट पवित्र स्थान के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है। यह एक आदर्श है कि कैसे एक गैर यहूदी जो इसराइल के लिए एक विदेशी है, अगर वह चाहे तो इसराइल की वाचाओं के तहत ईश्वर की घोषणा द्वारा ईश्वर की सेवा में लाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में नाजीर एक आदर्श और नमूना है कि कैसे एक गैर यहूदी आस्तिक बन सकता है और इसराइल के ईश्वर की पूजा कर सकता है। शारीरिक रूप से यहूदी और गैर यहूदी अलग अलग हैं। एक यहूदी के पास यह लाभ है कि वह अब्राहम, इसहाक और याकूब की वाचाओं में पैदा हुआ है, लेकिन गैर यहूदी के पास यह लाभ नहीं है। शारीरिक रूप से एक पुजारी और एक नाजीर अलग अलग हैं। एक पुजारी लेवी के गोत्र का होता है, एक नाजीर नहीं। आध्यात्मिक रूप से एक यहूदी और एक गैर यहूदी जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उन्हें प्रभु के सामने समान दर्जा दिया जाता है। आध्यात्मिक रूप से एक पुजारी और नाजीर प्रभु के सामने समान दर्जा दिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक की भूमिकाएं अलग अलग हैं। एक को अपनी भूमिका में जन्म दिया गया था, जबकि दूसरे को अपनी भूमिका प्राप्त करने के लिए, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन दोनों मामलों में वे एक ही वाचा के अधीन है। यह मुद्दा यह है कि हम इन प्रतिमानों और सिद्धांतों को नए नियम में देखेंगे। पौलुस उन पर बात करता है और विशेष रूप से गिनती में दर्ज घटनाओं का उपयोग करके यह बात स्पष्ट करता है कि यीशु ने तोरा के प्रतिमानों और सिद्धांतों को पूरा किया। लेकिन और यह इन दिनों और हमारे सामने आने वाले दिनों में समझना बहुत जरूरी है। पौलुस यह भी कहता है कि यदि पहले से ही छुराए गए इसराइलियों ने विद्रोह किया और प्राचीन समय में इसके लिए उन्हें दंडित किया गया, जैसा कि गिनती की पुस्तक में बताया गया है, तो यीशु के लहू से छुराया गया एक विश्वासी क्यों सोचेगा कि वह विद्रोही हो सकता है और परमेश्वर के कठोर अनुशासन से बच सकता है। मैं बिमिदबार गिनती के अध्ययन की इस तैयारी को एक ऐसे व्यक्ति के शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा जिनके कार्यों की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और खुद को आमतौर पर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ पाता हूं। गॉर्डन वेनहम, एक अद्भुत ईसाई विद्वान जो इंग्लैंड में ग्लोरोस्टर कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं और वे आधुनिक ईसाई के लिए बाइबल के अनुष्ठान के मूल्य को समझने और स्वीकार करने के महत्व के बारे में यह कहते हैं। इसी तरह जानवरों, आटे, तेल और शराब की बलि चढ़ाने की जो गिनती में निर्धारित की गई है, वे अब ईसाई पूजा की वैध अभिव्यक्ति नहीं है क्योंकि वे खुद से परे मसीह के एक प्रायश्चित बलिदान की ओर इशारा करते हैं जिसने उन्हें अप्रचलित बना दिया है। फिर भी ईसाइयों को अभी भी याद दिलाया जाता है, हम लगातार परमेश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम को स्वीकार करते हैं। भलाई करने और जो तुम्हारे पास है उसे बांटने में लापरवाही न करें, क्योंकि ऐसे बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर की आराधना के लिए पूरे दिल से समर्पण का सिद्धांत पुराने और नए नियमों को जोड़ता है, भले ही हमारी भक्ति का तरीका बदल गया हो। इसी तरह यदि दशमांश ईसाइयों के लिए दान का आदर्श बना हुआ है, तो यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ विश्वासियों ने स्पष्ट रूप से बहुत अधिक दिया। यदि बाइबल के अधिकांश विधान आज लागू नहीं किए जा सकते हैं, तो इसकी संपूर्णता और विस्तार पर ध्यान आधुनिक चर्च को यह पूछने के लिए चुनौती देनी चाहिए कि क्या हमारा अधिक लापरवाह रवैया उदासीनता का आवरण नहीं बन सकता है। गॉर्डन वेनहम निश्चित रूप से बलिदान प्रक्रियाओं को नए सिरे से शुरू करने का आह्वान नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि बाइबल के बहुत से अनुष्ठान जो बाइबल के परवाए में अपना रूप लेते हैं,
उदाहरण के लिए, जबकि प्रायश्चित या मोक्ष के लिए किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है, वास्तव में सिखाने और याद दिलाने के लिए आवश्यक है। हमें ईश्वर के सिद्धांतों, उनके नियमों और आदेशों के बारे में सिखाने और याद दिलाने के लिए कि कैसे उनके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन जीना बेहतर है, न कि धुन से बाहर।
गिनती की पुस्तक ऐतिहासिक, पूजनीय, शिक्षाप्रद और कई बार काव्यात्मक है।
तोरह की प्रथम तीन पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद अब आप उन अद्भुत प्रकाशनों को ग्रहण करने और समझने के लिए तैयार हैं जो प्रभु परमेश्वर के उद्धारक गुण या व्यक्तित्व यीशुआ हामसीहा के कार्य से झरने के लिए अनेक संपर्क सूत्र प्रदान करेंगे।